जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी,
जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी,
जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन,
यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन,
यमुना तीरावन छारी जय कुंज बिहारी,
यमुना तीरावनचारी जय कुंज
बिहारी, यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी,
यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी।
ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी,
जय कुंज बिहारी,
जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव, जय
जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव,
प्रभुपा जय
जय ओम श्रीपाद परमहंस लंकाचार्य अष्टत्रष्ट हे डिवाइनेस। ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इस्कान फाउंडाचार्य संयुक्त होवट जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम श्रीपाद परमहंस लंकाचार्य अष्टत्रष्ट हे डिवाइनेस। भक्ति सिद्धांत गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य सरदार ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद्गौर भक्ति मिल की श्री श्री गौर निताय की सिद्धाधर राधा भगवान की श्री कृष्ण बलराम भगवान की श्री राधा पार्षदी ललिता विशाखा जी की सीताराम कृष्ण भक्त हनुमान जी की ग्रंथराज भागवतम की तय गौर प्रेमानंद आल ग्री सम्यूटिज आल ग्री सम्यूटिज आल ग्री श्री गुण गौरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय आठ श्लोक संख्या दो। इस अध्याय का नाम है क्षीर सागर का मंथन। तामा अग्निहोत्रीम ऋषयः जगृहो ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृपा ताम अग्निहोत्रिमुष्य जगृहो ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृपा ताम अग्निहोत्रिमृषयः जगृहो ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृपा ताम अग्निहोत्रिमृषयः जगृहो ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृपा माताजी उस गाय को अग्निहोत्रीम अग्नि में आहुति के लिए मट्ठा दूध तथा घी प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऋषयः यज्ञ करने वाले ऋषियों ने जगृहो भार संभाला ब्रह्मवादिनः वैदिक अनुष्ठानों को जाने वाले यज्ञस्य यज्ञ का देवयानस्य स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक जाने की इच्छा को पूरी करने वाला मेध्याय आहुति डालने के योग्य हविषे घी के लिए नृप हे राजा अनुवाद होता पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हे राजा परीक्षित वैदिक अनुष्ठानों के पूर्ण जानकार ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया जो अग्नि में आहुति डालने के लिए नितांत आवश्यक पदार्थ अर्थात मट्ठा दूध तथा घी उत्पन्न करने वाली थी। उन्होंने शुद्ध घी के लिए ही ऐसा किया क्योंकि उन्हें उच्च लोकों में ब्रह्मलोक तक जाने के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता थी। तात्पर्य, सुरभि गायें सामान्यतः वैकुंठ लोक में पाई जाती हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में आया है। भगवान कृष्ण अपने लोक गोलोक वृंदावन में सुरभि गायें पालने में व्यस्त रहते हैं। सुरभिर विपालयंतम, एक गायें भगवान की पालतू गायें हैं। सुरभि गांव से चाहे कोई कितना ही दूध ले सकता है और जितनी बार चाहे उन्हें दूह सकता है। दूसरे शब्दों में सुरभि गाय असीम मात्रा में दूध दे सकती है। यज्ञ संपन्न करने के लिए दूध आवश्यक है। मुनिगण जानते हैं कि मानव समाज के जीवन को पूर्ण बनाने के लिए दूध का प्रयोग किस तरह किया जाए। चूंकि शास्त्रों में सर्वत्र गौ रक्षा की स्मृति की गई है, अतएव ब्रह्मादि ने सुरभि गाय का भार संभाला क्योंकि असुरों की विशेष रुचि उसमें नहीं थी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण कुमार सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो आप सबको पहली बार इस संघ के कितने लोग आए हैं? जब पहली बार आए तो भागवतम एक अच्छा तो यहाँ प्रतिदिन होती है, राइट? लेकिन आप लोग प्रतिदिन नहीं आते। आते हैं सब आते हैं डेली नहीं। ये प्रसंग इस तरह से है, ये बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। एक घटना है सतयुग की। चार युग होते हैं, कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आप बताइए सबसे उत्तम युग कौन सा है? कलयुग। सतयुग नहीं है, ऐसा जानते हैं क्यों? क्योंकि सतयुग में सबसे ज्यादा भगवान को अवतार लेना पड़ा था। ये सत्य कि नहीं सत्य? जितने अवतार हुए हैं सब ज्यादा अवतार कहाँ लेना पड़ा था? सतयुग में। क्यों? क्योंकि सतयुग में सबसे ज्यादा राक्षसों का आक्रमण रहा देवताओं पर और जितने साधु संत थे, इसलिए भगवान को बार बार सतयुग में आना पड़ा। तो ये भी घटना सतयुग की है। दुर्वासा मुनि के श्राप से क्या हुआ? देवता लोग पराजित हो गए। बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। जब देवता लोग परास्त हो गए तो इंद्र स्वर्ग लोक पर किसका कब्जा हो गया? असुरों का हो गया, इनका कब्जा हो गया। तो जितने भी प्रमुख देवता ब्रह्मा जी शिव जी है ना, ये सब मिल करके भगवान के पास जाते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की इन लोगों ने। फिर भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान का जो तेज चमक था ये लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से ये भगवान का दर्शन कर पाए। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने विशेष प्रार्थना की भगवान से। तो भगवान ने उनको राय दिया कि ऐसा करो कि तुम देवता लोग मिल करके जो असुर गण हैं दानव लोग उनसे संधि कर लो, इसमें बड़ी भलाई रहेगी। और संधि करने के बाद जो क्षीर सागर का है उसका मंथन करो तो उसमें अमृत निकलेगा, अमृत बांट करके ले लो। भगवान बड़े चालाकी से काम किया, भगवान बहुत, क्योंकि भगवान जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, त्रिकालदर्शी हैं, तो बड़ा टेक्निकली उनको समझा दिया। तो देवताओं का यह प्रस्ताव दानों को बड़ा अच्छा लगा। तो भगवान ने कहा था कि जो मंदराचल पर्वत है उसका बनाओ मथानी, और बासुकी नाग जो है उनको बनाओ रस्सी, और दोनों मिल करके क्या करो। अब देवता और दानों जब संधि हो गई तो दोनों मिल करके मंदरांचल पर्वत को उठाया, सब मिल करके, और उठा करके क्षीर सागर के पास लाने लगे। लेकिन इतना वजन था कि वो लोग क्षीर सागर तक नहीं ला पाए, उनको जमीन पर रखना पड़ा, और उसमें कितने लोग मर भी गए दोनों पथ से। तब भगवान क्या किए, अपने गणों पे बैठ करके है ना, और भगवान वहां आ गए कुंभ के साथ। तो जिस मंदराचल पर्वत को पूरे देवता और दानों सब मिल करके उठा के लेके आ रहे थे और नहीं उठा पाए गंतव्य तक, भगवान ने क्या किया जाते, बाएं हाथ से उठा लिया, किस हाथ से, बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत उठा लिया, और उठाकर कितनी बड़े विशाल पर्वत को और गौण जी के कंधे पर बैठ गए और लेके उड़ गए। सोचने वाली बात कि गौण जी में कितनी ताकत होगी। हाँ, एक तो भगवान का वजन और पहाड़ का वजन, और सब लेकर के दोनों उड़े जा रहे। ये हम सबको सोचना चाहिए कि जो लोग देवताओं को भगवान मानते हैं, है ना, उनको सोचना चाहिए कि देवता भगवान नहीं है, जो ताकत भगवान में होती है वो देवी देवता में नहीं होती। इससे पता चलता है यही भगवान स्वयं द्वापर युग में आए, गिरिराज जी को उन्हें पांचों उंगलियां लगाए भी नहीं, सिर्फ छोटी वाली उंगली से उठा लिया। तो भगवान की तो आदत है सब उठाने की, शतरंज में उठाया था है ना, और इसे उठा खेल खेलो। तो आजकल के तो तथा कथित गुरु अपने आप को भगवान मान लेते हैं, या कहते मैं भगवान कहता हूँ, बंसी बजाने लगते हैं, मोर पंख लगाने से थोड़ी कोई भगवान बन सकता है। आजकल जो नकली भगवान है वो क्या कर मुकुट में पंख लगा के पहुँचेंगे और लड़कियों के साथ डांस करेंगे और बाद में जेल चली जाएंगे। हमें नकली भगवान से सावधान रहना चाहिए। अगर कोई गुरु कोई व्यक्ति अपने आप के कहता है कि मैं भगवान हूँ, कृष्ण हूँ, अपने को अवतार हूँ, तो उसे कहिए कि आप पहले पहाड़ उठाए, क्योंकि हमारे भगवान तो पहाड़ उठाए थे। हम तो आपसे कहें आप दोनों हाथ उठाओ, भगवान तो एक उंगली से उठाए थे, आप दोनों हाथ से उठाओ, हम कंसेशन देंगे। सात दिन सात रात उठाए रखो बिना खाए पिए, इस सब मर जाएंगे, कहेंगे नहीं, भाग खड़े होंगे, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। किसी कहने से कोई भगवान थोड़ी बनता है। तो ये सब लीलाएं हमको देखना चाहिए कि जिस मंदराचल पर्वत के देवता और दानों मिलकर के नहीं उठा पाए, भगवान एक खांस उठा करके और गणों पर लेकर के अजागे क्षीर सागर के मध्य में रख दिया। भगवान ने कहा कि बासुकी को लपेटा है ना, बासुकी अपने आप पूरे मंदराचल पर्वत को लपेट लिया। अब भगवान देखे क्या किया कि अब दोनों एक को टेल पकड़ना था और दूसरे को सर तरह, तो भगवान बड़े चालाकी से क्या किए, जो बासुकी जी का मुंह था ना, सर्प का जो मुंह था उस तरफ खड़े हो गए, पकड़ लिया। तो सारे देवता भी जो है उधर लग गए। अब जो दानों थे है ना, वो सोचे ऐसे कैसा हो सकता है, अरे हम पूछ थोड़ी पकड़ेंगे, हम लोग इतने गिरे हुए हैं। क्योंकि उनके दिमाग में ये था है ना कि सर्प का जो मुंह होता है वो इज्जतदार होता है, प्रतिष्ठित जगह है, पूछ प्रतिष्ठित जगह नहीं है। तो देवता लोग जो है बेईमानी कर रहे हैं, हमको गिरा हुआ समझ के पूछ पकड़ा रहे हैं, हम पूछ नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो उल्टा सोचते हैं। देव जो दानव होता है हमेशा उल्टा सोचता है, अगर भगवान पूछ पकड़े होते तो ये लोग उधर जाते है ना। तो भगवान की भी चालाकी थी, भगवान चाहते थे कि देवता लोग इधर ही आएंगे, भगवान चाहते थे कि देवता लोग इधर ही आए, है ना। जो कि उनकी नियत ऐसी थी, तो जानते हैं तब भगवान का भाई देखे हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे, अब आप लोग सब के मुख की तरफ आ जाइए और हम लोग क्या करें पूछ पकड़ेंगे। अब जब देव भगवान जब पूछ पकड़ लिए तो सारे देवता पूछ पकड़े, तो इसमें सबसे आराम किसको रहेगा जो पूछ पकड़े, क्योंकि जिस समय मंथन करने लगा तो बास्केट के मुंह से जो है गर्म हवा विषम निकलने लगा। अब सब देवदान लोग परेशान हो गए कि हम तो फंस गए, और देवता लोग बड़े आराम से पूछ पकड़ करके, जहाँ कोई खतरा भी नहीं था वो लगे हुए थे। ये देखिए भगवान का दिमाग कितना तेज था, राइट। तो यहाँ प्रभुपाद सुनते हैं समझाते हैं कि जो साधु पुरुष जो करता है, जो दुष्ट प्रतिक्रिया होते हैं वो हमेशा उसके उल्टा करना चाहते हैं, याद जान लीजिए। ये दुष्ट पुरुष का क्या होता है, स्वभाव होता है। तो देवता लोग जो है, तो इस तरह से ये मंथन क्या हो गया, शुरू हो गया। तो मंथन से जब जहर निकला, तो जहर तो कोई चाहता नहीं था, तो शंकर जी की जो एक प्रार्थना की गई, शंकर जी ने कहा कि भगवान शिव, जो कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव क्या है, वो एक वैष्णव है, महान वैष्णव। शास्त्र में बताया गया है वैष्णवानाम यथासंभव, ये जितने वैष्णव होते हैं उनमें महान वैष्णव कौन है, शिव जी है ना। 12 महाजनों में से एक महाजन भी है शिव जी। तो जब जहर की बात आई तो किसकी ड्यूटी लगाई, शंकर जी की। शंकर जी ने क्या किया, पूरा जहर जो है अपने अंजली में लेकर के और पी गए, लेकिन अंदर नहीं डालने दिया, अपने गले तक ही सीमित रखे। ऐसा कोई कर सकता है, कर दिखाओ, आओ लोग पानी पियो यहीं रोक लो, ऐसा कर हो सकता है, कोई कर सकता है। लेकिन जो नहीं कर सकता वो शंकर जी कर सकते हैं। शंकर जी ने दो बड़ा काम किया, वजह उनके हर काम बड़े होते हैं। एक तो जब गंगा जी आई थी, जब गंगा जी भगवान के चरण कमल से निकले, तो गंगा जी ने कहा था कि जब मैं ऊपर से नीचे जाऊंगी तो मेरे वेग को संभालेगा कौन, तब उसमें कौन काम आए थे, शिव जी। और शिव जी ने ऐसा चमत्कार किया कि गंगा जी उनकी जटा में क्या कर लिपट गई, बाहर का रास्ता नहीं निकला। भगीरथ जी को फिर प्रार्थना करनी पड़े क्या, गंगा जी को छोड़िए जटा से। जब प्रार्थना किया तो शंकर जी बड़ी जल्दी क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उन्होंने एक कलर से, आपने देखा होगा फोटो में भी, एक धारा निकलती है ना, तो उसी से गंगा जी करते। तो जब जहर निकला तो उन्होंने यहाँ पर रोक लिया, तो उनका इतना भाग क्या हो गया, नीला हो गया, तो कंठ नीला हो गया, तो उनका क्या नाम पड़ा, नीलकंठ। आप लोग सब पंडित हो, सब जानते हो। तो इस तरह से नीलकंठ भगवान का नाम पड़ा, क्योंकि उस विष को किया। तो इस तरह से कई रथ निकलने आरंभ हुए। आज का जो प्रसंग है वो किसका है, सुरभि गायक का। तो जब वे लोग मंथन कर रहे थे तो उसमें कौन उत्पत्त हुई, सुरभि गायक। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताया गया है कि सुरभि गायक कहाँ पाई जाती हैं, गोलोक में। जो गोलोक नाम गाय का लोक, जहाँ गौएं रहती हैं और कृष्ण रहते हैं, तो कृष्ण घर गोलोक का मतलब होता है जहाँ गाय रहते हैं, ऐसा लोक है गोलोक। भी भगवान गोलोक रहते हैं, उनके चारों तरफ क्या होती हैं, गौएं होती हैं, सुरभि गाय होती हैं और बाल बाल होते हैं, गोपियाँ होती हैं, बस इसी के बीच में भगवान आनंद लेते हैं। तो गोलोक भगवान जो है, ये सब सुरभि गाय उनकी बड़ी खासियत होती है। सुरभि गाय की लीला ये तो सत्यों की घटना है। सुरभि गाय, अब ये सुरभि गाय के बारे में प्रभुपाद इतना सुंदर बताते हैं कि आजकल के ग्रामीण भीतर नहीं होती। सुरभि गाय सदैव दूध देती है, और जितना दूध चाहिए, एक टन, दो टन, सौ टन, अर्थात जितना आप दूध चाहेंगे उतना दूध वो आपको दे सकते हैं। ये सुरभि गाय की क्या कहते विशेषता होती है, और उन्हीं का कुछ विकृत रूप इस पृथ्वी पर भी कुछ गायें होती हैं, है ना, जो कि बहुत ही दूध देती हैं। हर गायों की अलग अलग जाति और वैरायटी होती है, आप समझे। जैसे अभी वैज्ञानिकों ने एक खोज निकाला कि जो गिरी गाय होती हैं उनके गोमूत्र में सोना पाए जाने लगा, पता ये वैज्ञानिक ने प्रूव कर दिखाया। गोमूत्र जब आप पीते हैं तो उसमें सोना का भी मात्रा होता है। अब आप सुने तो इस तरह सुरभि गाय जो होती हैं उसका वर्णन प्रभुपाद जी। अब ये जो गाय है हमारे लिए क्यों पवित्र है, तो जब गाय प्रकट हुई तो जो राक्षस लोग थे, तामल लोग थे, उन्होंने गाय पर कोई दिलचस्पी नहीं, है ना, कि हम नहीं लेंगे। एक फिर जो देवता लोग बड़े प्रसन्न होकर के क्या किया, स्वीकार किया, और ऋषि मुनियों को दे दिया, क्योंकि गाय से क्या मिलता है, दूध मिलता है, घी मिलता है ना, मक्खन मट्ठा यहाँ जैसे लिखा हुआ है। तो गाय से के दूध से कितनी चीजें बनती हैं। और सबसे बड़ा यह है कि जो यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है उसमें दूध दही घी सब की जरूरत पड़ती है, और घी की तो आहुति में जरूरत पड़ती है। जितनी बार स्वाहा बोलेंगे उतनी बार घी डालना ही पड़ता है, राइट, ऐसा नहीं कि घी नहीं डालेंगे। तो पवित्र शुद्ध घी चाहिए, इन सब के लिए हमको क्या चाहिए, गाय चाहिए। तो यहाँ पे अन्यत्र प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि हमारा देश का कितना दुर्भाग्य है कि जो दुष्ट लोग होते हैं, दैत्य वंश के होते हैं, दैत्य लोग, उन्हें गाय रुचि नहीं रखते, लेकिन जो साधु होते हैं उनकी रुचि किस में होती है, गाय में होती है। और भगवान स्वयं गो ब्राह्मण हिताय से इस पृथ्वी पर भगवान आते हैं गो गायों की और ब्राह्मण की सुरक्षा करने के लिए। भगवान खुद गाय को चराते थे, एक लीला है कब द्वापर युग की, कि भगवान खुद अब गायों को क्या करते थे, चराते थे, गो सेवा, इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा, गोपाल। यही कृष्ण जब इंद्र का घमंड दूर किया था, पता है ना लीला, सात दिन सारा गोवर्धन पर्वत उठा करके, गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद जब हार गए इंद्र, तो जब आए भगवान से प्रार्थना करने के लिए तो किसके साथ आए थे, यही सुरभि गाय के साथ, सुरभि गाय के साथ ही आए थे। और सुरभि गाय ने क्या किया, खूब बढ़िया अपने दूध से भगवान का क्या किया, अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद तब सुरभि गाय ने भगवान का नाम दिया गोविंद, क्या नाम दिया, गोविंद, जो इंद्रियों और गायों को जो है सुख प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा, गोविंद। एक गोविंद नाम जो है भगवान को बहुत ही प्रिय है, वैसे भगवान को अपना हर नाम प्रिय है, लेकिन गोविंद बहुत ही प्रिय नाम है जिसका सुरभि गाय ने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो वही सुरभि गाय, तो ये सुरभि गाय की उत्पत्ति इस प्रकार से मंथन से। अब देखिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताए हैं कि जो दानव प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें गाय मिर्चि होती है, लेकिन गाय का जो प्रोडक्ट होता है उससे कम होती है, गाय का मांस खाने में रुचि ज्यादा होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस समय अपने हिंदुस्तान में भी गाय काटी जाती है, गाय काटी जाती नहीं, काटी जाती, काटी जाती है, चोरी छिपके काटी जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बहुत बड़े अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी, हम लोगों को मंदिर बुलाया था, तो उनकी पत्नी ने पहले ही बता दिया था कि हमारे जो हस्बैंड हैं प्रभु जी मांसाहारी, बहुत मांस खाते हैं, मैं तो परेशान रहती हूँ। इसलिए हम लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से उनको दो घंटा प्रचार किया। तो जब गोविंदा में प्रसाद लेने के बाद उनकी विदाई करने लगे, जब जाने लगे, तो वह आदमी जानते क्या बोलता है कि स्वामी जी या प्रभु जी, आज से हमने बीफ खाना छोड़ दिया, अर्थात गाय का मांस छोड़ दिया, लेकिन बाकी हम खाएंगे। अरे हरि बोल, क्या है, गाय का मांस छोड़ा है लेकिन बकरियों को तो खाएगा ही खाएगा। हम लोग बड़ा खुश हैं कि एक कहेगा कि हम मांस खाना बंद कर दें किसी का, लेकिन उसने क्या कहा कि आज से गो मांस खाना बंद कर दूंगा, बाकी खाऊंगा। हमें बड़ी तकलीफ ये बात कही कि ये व्यक्ति जो है गाय का भी मांस खाता था, देखने में इतना सुंदर, इतना सब आयुष अधिकारी, ये सब बड़ा पद पोस्ट पावर, गाय का मांस खाता है, पता नहीं था। तो इतने गंदे गंदे लोग हैं, गोरे गोरे लोग, सब मांसाहारी हैं, सुअर का मांस खाते हैं। गाय अब चाइना चले जाए, कहीं भी जाए चले जाइए, लोग कॉकरोच खा जाते हैं। जिस कॉकरोच को लोग, हम लोग देख के डरते हैं, कितना उनको देख के बड़ा घृणा जैसी उत्पत्त, राइट, खाने में पड़ जाए तो आदमी खाने नहीं, उल्टी हो जाएगी, और उनको ऐसे जिंदा पकड़े खा जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे बड़े गोरे चिट्टी लोग होते हैं, जैसे चाइनीज लोग होते हैं, ये जितने अंग्रेज लोग तो फॉरनर होते हैं, है ना, ये सब गोरे चिट्टे होते हैं, सब मांसाहार खाते हैं। सही बात है नहीं सर, देखने बड़े सुंदर लगेंगे, खाएंगे मांसाहार, क्या फायदे सुंदरता से। हमको तो बड़ा ताजुब है, ऐसे इस संसार में लोग हैं कि उस जीव को खाते हैं। जब साध कहता है कि अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो उसका जीवन लेने का आपका कोई अधिकार नहीं है, इसे जियो और जीने दो। कोई भी जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, वो भी तड़पता है, उसे भी दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन ये दैत्य लोग जो है, दैत्य के वंशज जो है, उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं आती। एक कहावत है, वो कहावत आप लोगों ने सुना होगा, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, कहावत सुना है नहीं सुना? लेकिन आजकल के लोग, इंसान इस कहावत को भी झुटिया रहे हैं। है जो आदमी कुत्ते का संग करता है, कुत्ता तो वफादार होता है, इंसान इतना घटिया होता है, कुत्ता को पालता है लेकिन फिर भी वफादार नहीं होता। आप सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं, जब संग का रंग चढ़ता है तो कुत्ता के संग तुम रहते हो, तुम्हें वफादार बनना चाहिए कुत्ते की तरह, है ना, तुम कुत्ते से गिरे हुए हो, कुत्ता कम से कम वफादार तो है, लेकिन तुम कुत्ता को पाल रखे, कुत्ते के टहलाते हो, उनके साथ रहते हो, है ना, जरा सा गुण तुम्हारे अंदर नहीं पड़ा, इंसान इतना गिर चुका हुआ। आप सब, मैं सच कर रहा हूं सर, मैं क्या आप समझते ना कि संग का रंग चढ़ना चाहिए, लेकिन वास्तव में इंसान एक ऐसा है कि जानवरों से भी क्या हो गया है, बदतर हो गया है। इस समय इस बड़ी स्थिति खराब हो गई दुनिया में, आप देखे इतना भयानक हो चल रहा है कि सब जो है, इसीलिए प्रभुपाद साथ कहता है कि धर्म बिना नर पशु ही समाना, जो व्यक्ति धर्म के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहा है वो पशु के समान हो, चलता फिरता इंसान भी क्या है, पशुवत है, पशु के ही समान है। इसीलिए जो धर्म है, धर्म का जो आचरण है, जो शास्त्र है, ये किसके लिए है, इंसानों के, मनुष्यों के लिए। इसलिए हमें धर्म के अनुसार अपना जीवन करना चाहिए। धर्म की स्थापना स्वयं भगवान के द्वारा की गई है, धर्म के साथ साथ भगवत प्रति भगवान के द्वारा स्थापित की है। इसलिए भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का एक एक संदेश जो है हमको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसीलिए गोहत्या नहीं होनी चाहिए। अगर इंसान खाना बंद कर दे तो कसाई खाने अपने आप क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि इंसान खाता है, इसलिए दुकानें बढ़ रही हैं। हमारे इंडिया में तुम्हें हैरान हो कि KFC मैकडोनाल्ड जहां तक वो इनकी ब्रांच खुलते चली जा रही है, क्यों खुलते चली जा रही है कि इंसान खा रहा है। आप सब लोग खाना बंद कर दो, आप देखेंगे दुकानें अपने आप क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। जब उनका माल बिकेगा नहीं तो क्यों दुकान खोलेंगे। तो हम खा करके उनको मालामाल कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद जो दुर्दशा मांसाहारी को होती है जिंदगी भर वो भूल नहीं सकते। आप जान लीजिए कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा मिलेगा, कर्मों का ही फल है आप जान लीजिए। इसलिए भगवान बहुत चालाकी से है ना अपने आप को क्या कर देते हैं, निष्पक्ष बना दिए। भगवान गीता में जो श्लोक बोला है इसको समझिए, भगवान कहते हैं कर्मणे वाधिकारस्ते, कर्म करने पर अधिकार तुम्हारा है, और फल किसके हाथ में है, मेरे हाथ में है, लेकिन जैसा कर्म करोगे वैसा फल मैं दूंगा। अर्थात गेंद हमारे पाले में है। भगवान बड़ी चतुराई से है ना सब कुछ अपने ऊपर डाल दिया। अब हमारे ऊपर है कि हम भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का कितना सदुपयोग करते हैं। हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। और ये जो इस्कॉन संस्था है इसी के लिए है कि आप किस तरह से भगवान के शब्दों को अपने जीवन में उतारिए, उनके वचनों का क्या करिए, सदुपयोग करिए। जो आपके हित में है उसको अपनाइए, जो आपके हित में नहीं है उससे क्या करिए, दूर करिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने चार नियम बनाया। वो चार नियम क्या है, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए। उसी ये नियम ऐसे नहीं बनाया गया इसलिए क्योंकि इसी पर पूरा जीवन हमारा क्या है, निर्भर है। किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। अब बड़े दुख के साथ करना पड़ता है कि लोग इसी में लिप्त हैं नशा करने में, और नशा की इतनी वैरायटी वो लोग ढूंढ निकाले हैं पता नहीं कहां से, कितनी प्रकार की नशा होती है, लोग नशा करने लगे। और आजकल तो गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देती है ना, अगर आप एयरपोर्ट जाए तो वहां पे स्मोकिंग जोन लिखा रहता है ना कि अगर आपको स्मोक करना है तो उस कमरे में जाकर के धुआं निकाल। इस सरकार बड़ी विचित्र होती है, एक हाथ से कहती है, उसका एक डिपार्टमेंट होता है जो नशा विरोधी होता है कि नशा नहीं करना चाहिए, राइट, और दूसरा कहता है लाइसेंस देता है लो शराब बच्चे नशा करो। अरे तुम सिगरेट पर लिखने से कोई फायदा नहीं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, हर डिब्बे में लिखा रहता है, लिखा रहता नहीं था। और ऐसा लिखा रहता कि आप पढ़ ही ना पाए तो उसमें भी दिमाग लगाते हैं। तो मूर्खता क्या है कि जब हम जानते हैं कि यह चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो हमको क्या करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम पीते भी हैं और दौड़ते भी हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, क्या फायदा है ना। ये बहुत स्थिति खराब है। तो सुरभी गाय को लेकर प्रभुपाद कई जगह इसी समय, इसलिए गाय क्या है, हमारी माता है, गाय को माता कहा गया है। सात प्रकार की माता होती हैं, इस माता को हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना। सबसे पहले तो धरती माता, धरती पृथ्वी को क्या कहा गया है, माता का स्थान दे, क्योंकि हमारा पांव किस पे टिकता है, धरती माता। जो हम खाते पीते हैं ये कौन देता है, धरती माता देती है। जब आप केला खाते हैं एक केला की जड़ आसमान नहीं होती, कहाँ होती है, नीचे होती है। ये जो फूल हम देख रहे हैं इसकी जड़ कहाँ है, पृथ्वी माता। ये सब सप्लाई कौन कर रही है, पृथ्वी माता कर रही है। जैसे भी 9 बजे आप जाएंगे चावल दाल रोटी सब्जी खाएंगे, ये कौन दिया, ये पृथ्वी माता। भगवान क्या करते हैं, वर्षा जल और पृथ्वी माता ये मिल करके अन्न उत्पत्ति, के बिना जल के भी अन्न की उत्पत्ति नहीं होती। अब जल तब होगा जब खूब आप क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 भगवान गीता में कहते हैं कि जग से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। आसन में तो सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। इसीलिए हमें धरती माता का भी क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। हमारा संस्कार शास्त्र में बताया गया है कि सुबह जमीन पर पांव रखने से पहले हमें क्या करना चाहिए, धरती माता को भी 3 बार प्रणाम करना चाहिए। इसका भी मंत्र है, इस संस्कार है हमारा। फिर माता पिता जो हमको इस संसार में लाते हैं, जितने लोग बैठे हैं, आप लोग को लाने वाला कौन है, माता और पिता। क्योंकि माता पिता से ही संतान इस संसार में आता है। तो जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है ना, उनको भी छोड़ कर क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए कि माता पिता आप नहीं होते तो आज हम इस दुनिया में नहीं आते। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, माता पिता को लोग क्या कहते, रखना भी नहीं चाहते। शादी हुई नहीं कि चलो तुम लोग जो है वृद्धाश्रम ढूंढने लगते हैं, है ना, कोई रहना ही नहीं चाहता। क्योंकि माता पिता को हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। कि धरती पलाने वाले कौन होते हैं, वही होते हैं। पालन पोषण करने वाले कौन होते हैं, वही माता। तो जो माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, शादी भी कर दिया, और उसके बाद जो है आप साइड हो जाओ और माता पिता को अकेले छोड़ दो, सच है कि नहीं सच है? आजकल ऐसे हो रहा है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप उनके साथ कर रहे हो, कल आपके बच्चे आपके साथ करेंगे, वो बच्चे आप करेंगे, उनके बच्चे आपके साथ करेंगे। ये परंपरा चलती रहेगी। इसलिए हमें क्यों कैसा करें, इसलिए भगवान जब इस पृथ्वी पर त्रेता युग में आए तो भगवान राम ने क्या सिखाया मर्यादा, कि सुबह उठ करके भगवान सबको प्रणाम करते थे। माता पिता जो गुरु जो भी थे बड़े घर में, सबको क्या करते थे, खुद प्रणाम करते थे। ये आदर्श भगवान राम ने प्रस्तुत किया, भगवान कृष्ण ने भी यही किया। भगवान का जन्म जेल में हुआ, सोचने वाली बात है। जब भगवान राम क्यों आए तो महल में उत्पन्न है, लेकिन कृष्ण जब आए तो जेल में। क्यों? तो उनके माता पिता जेल में थे, तो अपने माता पिता को जेल से छुड़ाने के लिए भगवान जेल में ही आए, और कंस को मार करके अपने नाना को दोबारा राजा बनाए। भगवान आए ही अपने परिवार सुरक्षा के कल्याण के लिए, गोब्राह्मण गाय की ब्राह्मण जिनकी जो असुरक्षित थे दत्तों के द्वारा, उनकी सुरक्षा करने के लिए भगवान आए। तो इसलिए इस कलयुग में भी, शतयुग में भी जब सुरभि गाय आई तो किस तरह से लोग जो है उसमें भी मांसाहार था, ये रावणगढ़ से मानसिक आते थे। हर युग में महा मांसाहारी रहे हैं, लेकिन जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वही मांसाहार करता है, नशा वही करता है। इसलिए हमें साधु राजा बनना चाहिए, साधु बनना चाहिए, शुद्धता से रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्धता बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गाय हैं उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है, हमें गाय की पूजा करनी चाहिए। और गाय जो दूध देती है, घी देती है ना, इन सब को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। और भगवान तो फेमस हैं इसके लिए, भगवान दूध दही चुरा चुरा के खाते थे, है ना। और दूध दही घी किसको अच्छा नहीं लगता, है ना, ये मिल्क प्रोडक्ट। तो जो गाय माता हमें दूध देती हैं, घी देती हैं, है ना, उनका हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसलिए गाय को माता कहा गया है। और गाय एक ऐसी माता है जिनका हर वस्तु पवित्र मानेंगे। जितने भी दुनिया में इंसान से लेकर के दूसरे एनिमल्स हैं, किसी का स्टूल पवित्र नहीं माना जाता, राइट। लेकिन गोबर जो होता है, जो गाय का मल होता है, गोमल जिसे कहते हैं, है ना, गाय के दूध को गोरस कहते हैं, गाय के मूत्र को गोमूत्र कहते हैं, और गाय के मल को गोमल कहते हैं। अब आप सोचिए ऐसा कितना पवित्र है कि गोबर भी जो है शुद्ध माना जाता है, और उसकी बढ़िया लिपाई होती है। अब गाय के जो गोबर होती है उसी से गौरी और गणेश देवता बनाए जाते हैं, मंत्रों द्वारा स्थापित की जाते हैं। आप खुद सोचिए ऐसी का है जिसका कि गोबर भी, जिसका मल भी इतना पवित्र हो कि इंसान का मल पवित्र नहीं माना जाता, राइट? कोई पवित्र नहीं माना तो उस, लेकिन गाय इतनी पवित्र, इंसान से चित्त बेचारी गाय है, उसका गोबर, उसका मल भी क्या होता है, पवित्र माना जाता है। उसका मूत्र लोग इंसान पीता है, पीता नहीं, यहां भी स्थान में मिलता है गोमूत्र, है ना? तो इतनी पवित्र जिसका मूत्र मल सब क्या हो, पवित्र हो, है ना? गोरस दूध, दूध से कितनी चीजें बनाई जाती हैं, ये सब क्या है, इस सब को भगवान का भोग लगाया जाता है। गोमूत्र भी काम आता है, गोमल भी क्या आता है, सब भगवान की सब साधना यज्ञ प्रवेश। इसीलिए जब गाय माता निकले तो देवताओं ने क्या किया, हाथों हाथ लपक लिया बस। इसीलिए तो हमें भी क्या करना चाहिए, गोपालक बनना चाहिए, गोरक्षक बनना चाहिए। हमें गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए, अगर जगह हो तो गाय का पालन करना चाहिए। आज पास जगह नहीं है, इस्कान के पास जगह है, इस्कान को आप गोदान किया करिए। हमारी कितनी गौशालाएं चल रही हैं कि प्रभुपाद जी इस्कान का जो प्रोजेक्ट है उसमें काउपरेशन, गाय की सुरक्षा भी इस्कान के प्रोजेक्ट, शास्त्र का आधार पर प्रभुपाद चाहते थे गाय की सुरक्षा करना चाहिए। इसीलिए आप सबकी जानकारी के लिए हमारी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, आपको क्या करना चाहिए, आप नहीं करते तो गाय दान करिए, गोदान करिए। हमारी गौशाला में हम लोग गाय के बड़ी अच्छी तरह से उनका देखभाल करते हैं। आप हमारे मायापुर जाइए, वहाँ पे गौशाला है, वृंदावन में गौशाला है, अभी हम लोगों ने 100 एकड़ जमीन और लिया है वृंदावन में मेन रोड के पास, जिसमें एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और उस बाकी जगह में पूरा गौशाला बनाएगी, गौशाला है। इस तरह से अमेरिका में भी हमारे बड़े बड़े गौशालाएं हैं, है फार्म कम्युनिटी। तो प्रभुपाद चाहते थे कि जो गाय किसी प्रकार की गाय है, अगर आपको कहीं मिले तो इन गायों को आप इस कान को दे सकते हैं, गोदान कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक गाय जो है चाहिए तो एक गाय कितने में आती है उसका भी दान कर सकते हैं। आप जा करके गोदान के लिए जो गाय को खिलाने के लिए मेंटेनेंस लगता है उसमें आप दान कर सकते हैं, है ना? इस तरह से आप गौ सेवा कर सकते हैं। हम जहाँ समझ सकते हैं कि शहर में भी अब उतनी जगह नहीं है कि इंसान को रहने के लिए जगह नहीं है, वहाँ गाय कहाँ पालेंगे, है ना? कुत्ता तो लोग पाल लेते हैं, कुत्ता बिल्ली तो छोटे छोटे जानवर होते हैं, उनको तो पाला जा सकता है, लेकिन अपने छोटे से मकान में गाय नहीं पाली जा सकती, राइट? लेकिन जो गाय को पालन कर रहे हैं उनको तो आप सहयोग कर ही सकते हैं, आप धन दे करके इन गौशालाओं को आप चला सकते हैं। इससे जितनी गौशालाएं हैं सब लोगों के धन से, दान से ही क्या रहे, गौशालाएं चल रही हैं। तो प्रभुपाद चाहते थे, इसीलिए हमें इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और विशेष जो हमारे इस कौन के भक्त हैं, आप सबसे यही अनुरोध है कि जो चार नियम का पालन प्रभुपाद ने, इसके कड़ाई से प्रचार करना चाहिए, नहीं तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से दूर होती जा रही है, है ना? आज कल जो नई पीढ़ी है उन्हें भगवान के बारे में, धर्म के बारे में शिक्षा बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। ये हमारा कर्तव्य है कि हम सबसे युवाओं से मिलें, शिक्षण स्थान में जाएं और प्रचार करें कि हमारा वास्तव में संस्कार क्या है। इसके लिए इसलिए गाय के बारे में खूब प्रचार प्रसार आप सब करना चाहिए ताकि गाय सुरक्षित रहे। और आप जानते हैं जितनी गाय की सुरक्षा आप करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, भगवान आपको प्रिय बनेंगे। तो जो साधु भक्त हैं वही गांव गायों के प्रति दिलचस्पी लेते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी कोई रुचि नहीं होती। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य समझा रहे हैं कि जब सुरभि गाय आई तो जितने दानों थे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था गाय के, लेकिन जो देवता लोग थे उन्हें जो है कि बताया गया कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का क्या होता है, निवास होता है। इतना भगवान कृष्ण उन गायों की खुद अपने हाथ से सेवा करते थे। तैसे गौ माता की सुरक्षा करना इस कलयुग में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि कोई सब लोग मांसाहार से बचिए, किसी भी प्रकार के नशा से बचिए, अवैध समय से बचिए, जुआ से बचिए, इतना अगर आप इन सब से बचते रहेंगे, भगवान के नाम का जप करते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो आप भगवान की प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि हमें शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। तो आज के श्लोक में यही है कि किस तरह से सुरभि गायें प्रकट होती हैं, और दानव लोग उसमें रुचि नहीं रखते, लेकिन जो देवता लोग हैं उसमें क्या करते हैं, रुचि रखते हैं। तो हम सब भगवान के भक्त हैं, हमें भी रुचि किस में होनी चाहिए, गाय में होनी चाहिए। गाय की सुरक्षा जितना भी हो सके हम करना चाहिए। इन्हें सिर्फ पनीर खाने के लिए गाय अच्छी है ना, दही खाने के लिए अच्छी है, दूध पीने के गाय अच्छी है, लेकिन सेवा करने के लिए सेवा भी हमें क्या करना चाहिए, जब शोषण ले तो करना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है आप सबका, कोई प्रश्न? हाँ बोले प्रभु जी। जी गायों की वैरायटी होती है, कामधेनु गाय वो होती है जो दूध के अलावा भी कई चीजें दे सकती है ना। आपको भोजन चाहिए तो भोजन दे सकती है, अनाज चाहिए तो अनाज दे सकती है ना। जैसे कल्पवृक्ष होता ना, वैसे कामधेनु गाय होती है। तो गायों की अलग अलग वैरायटी होती है। ये सब दिव्य लोकों में गाय पाई जाती है, यहाँ पे तो जो गाय पाई जाती है सब दूध देने वाली होती है। लेकिन भगवान के यहाँ तो ऐसे ऐसे वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष, कि आप जो इच्छा करें गुलाब जामुन, इच्छा करें गुलाब जामुन आ जाएगी, है ऐसे वृक्ष। हमारे लिए ये आश्चर्य हो सकता है, लेकिन जहाँ पे ये सब चीजें हैं वहाँ पे सब चीजें, तो ऐसे अलग अलग गाय होते हैं। कामधेनु गाय का अलग खासियत है, एक गाय अगर है कामधेनु तो आपको किसी चीज की चिंता नहीं, हर चीज कामधेनु गाय से मिलती है, ऐसा है। और कोई प्रश्न, कोई प्रश्न है तो आप लोग गायों का उदान करना चाहिए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि गौदान होना चाहिए, गौ सेवा होना चाहिए, और प्रचार बहुत जरूरी है। कि आजकल अपने हिंदुस्तान में प्रचार करने की बहुत जरूरत है, कि लोग मांसाहार के उनका झुकाव चलता जा रहा है, कैसे कम हो ये हमारा काम है, हमें जाकर उनको समझाना चाहिए। जैसे भी मैंने देखा था, एक बस हो रही थी तो एक मौलवी साहब थे टेलीविजन में, जाते क्या बोल रहे थे कि जिस तरह से आप लोग भिंडी काट के खाते हो उसे हम लोग बकरा काट खाते हैं, हमारे अंदर कोई अंदर, माने भिंडी बकरे कोई अंदर नहीं, तो जो दूसरी एक होती उसने तो बोला कि सेंस होता है, माने ये जो मांसाहारी लोग तुलना भी कर रहे थे कितना घटिया तुलना कर रहे हैं, कि जैसे आप लोग भिंडी काट के खा लेते हो वैसे हम बकरा खा लेते, तुम्हारे बकरा भिंडी में कोई अंतर नहीं, अंतर है, भिंडी थोड़ी दूध देती है, अंतर है। लेकिन जो आदमी अंधा हो जाता है ना, ज्ञान अंधा हो जाता तो हर चीज में बुराई दिखती है। तो इस लोग इतना भी कहने में संकोच नहीं करते, आप जानते। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथ राज सिंह भागवतम की।
Thank you.